बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 10 जून दिन शनिवार। स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा कर रहे हैं कैसे एक लड़की ने हर कदम पर मुश्किलों से दो दो हाथ किए, चुनौतियों का डटकर सामना किया और अपने पैरों पर खड़े होकर साबित कर दिया उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान वाकई हौसलों से होती है। स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, नाम है उम्मुल खैर, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तमाम दिक्कतों के बावजूद अच्छे नंबरों से पास करके अपने लिए एक बेहतर जिंदगी की इबारत लिख ली है। सुनिए संघर्ष और सफलता की कहानी उम्मुल खैर की जुबानी। आप भी रखें अपनी बात। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 पर, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने टेरिजा मे से गुजारिश की है कि इतिहास का सबसे खराब चुनावी मैनिफेस्टो बनाने के लिए वो पार्टी के दो अहम सदस्यों को उनके पद से हटाएं। बीबीसी को मिली जानकारी के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्हें कहा है कि फियोना हिल और निक टिमोथी को बर्खास्त न किए जाने की सूरत में पार्टी में नेतृत्व को लेकर प्रतियोगिता हो सकती है। दोनों नेताओं पर टेरिजा मे के काम करने के तरीके पर दबाव डालने का आरोप है। इस सप्ताह हुए आम चुनाव में बहुमत खोकर कंजर्वेटिव पार्टी ने दावा किया था कि वो उत्तरी आयरलैंड की बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई वजह नहीं दिखती कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को लेकर होने वाली बातचीत तय समय के अनुसार क्यों शुरू ना हो। इस सिलसिले में 19 जून को बातचीत शुरू होने वाली है। गुरुवार को हुए ब्रिटेन के आम चुनावों में गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के बहुमत खो देने के बाद एंगेला मर्केल ने पहली बार इस विषय पर बात की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ ब्रेक्सिट पर काम शुरू करने के लिए तैयार है।
Wir von unserer Seite sind verhandlungsbereit, wir haben die Leitlinien fertig, wir haben den Termin bestimmt und ich gehe davon aus, dass auch
हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है, चर्चा की तारीख तय कर ली है और मुझे लगता है जैसा मैंने आज वहां की प्रधानमंत्री से सुना, ग्रेट ब्रिटेन भी अपनी योजना पर कायम रहना चाहता है। हमें जल्द ही तय समय के अनुसार चर्चा करनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इसे शुरू करने में कोई रुकावट है। और यूरोपीय संघ के बाकी 27 सदस्यों और संस्थाओं की बात करें तो उन्हें भी इसकी चिंता है और मैंने किसी पक्ष से ऐसा कुछ नहीं सुना कि मैं मानूं कि ऐसा करना संभव नहीं है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर ऐतिहासिक रूप से आतंकवाद का पोषण करने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों को ऐसी फंडिंग बंद करनी चाहिए। उन्होंने खाड़ी इलाके के देशों से ये भी अपील की है कि नफरत फैलाना बंद करें और आतंकवाद का समर्थन करने वाली विचारधारा को खत्म करें। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के उनके पहले दौरे के दौरान कतर के पड़ोसी देश उनसे मिले थे और कतर के खिलाफ उनसे कदम उठाने की गुजारिश की थी।
The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism.
दुर्भाग्यवश ऐतिहासिक रूप से कतर बहुत उच्च स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश रहा है और मई के महीने में रियाद में हुए उस सम्मेलन के दौरान कई राष्ट्र एक साथ आए और उन्होंने मुझसे कतर के व्यवहार का विरोध करने के बारे में बात की और इसीलिए हमें एक फैसला लेना था कि क्या हम आसान रास्ता अपनाएं या हम एक मुश्किल लेकिन आवश्यक कार्रवाई करें। हमें आतंकवाद की फंडिंग को रोकना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। सीरिया में अमेरिका समर्थित विद्रोही सैनिक कथित इस्लामिक स्टेट समूह की राजधानी कहे जाने वाले रक्का के पश्चिमी हिस्सों में पहुंच गए हैं। इस्लामिक स्टेट के विरोध में बनी गठबंधन सेना कई महीनों से धीरे धीरे रक्का के आसपास अपने कदम बढ़ा रही है। मंगलवार को शहर के पूर्वी इलाके के कुछ हिस्सों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। बताया जा रहा है कि इलाके में भारी लड़ाई जारी है। इस्लामिक स्टेट के विरोध में लड़ने के लिए अमरीका हवाई हमले के जरिए मदद कर रहा है। कांगो की राजधानी किंशासा में बंदूकधारियों ने एक अभियोजक के कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर हमला किया है जिससे कई कैदी भाग निकले हैं। कितने कैदी भागे हैं इस पर अभी अलग अलग जानकारी मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से चलने वाले रेडियो ओकापी का कहना है कि कुल मिलाकर 17 कैदी भागे हैं जो ज्यादातर पुलिस स्टेशन से भागे हैं। अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये आंकड़ा कम है। कांगो की एक समाचार वेबसाइट पॉलिटिको के अनुसार हमलावर बुंदिया दिया कांगो के सदस्य थे जो राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित एक धार्मिक संप्रदाय है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल, मेरा नाम है संदीप सोनी। आप जानते हैं आज का इंडिया बोल है कुछ खास, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत खास मेहमान, नौजवान जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर अपनी जिंदगी रोशन करने के लिए अपना सूरज अपना आसमान खुद बनाया है। उम्मुल खैर, बीबीसी इंडिया बोल में स्वागत है आपका, और स्वागत हमारे उन तमाम श्रोताओं और दर्शकों का जो हमें दुनिया भर में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज ये कार्यक्रम वीडियो भी आप देख पा रहे हैं फेसबुक पर लाइव। अपनी बात रखने के लिए श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर एक बार फिर नोट करें, 1811-7000 और 1811-7001। उम्मुल, इससे पहले कि हम श्रोताओं से बात करें, आप अपनी कहानी शुरू करें और ये बताएं कि राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली की झुग्गियां, फिर JNU और अब भारतीय प्रशासनिक सेवा की राह पर चलने की तैयारी। रास्ता इतना आसान तो नहीं था, कांटे बहुत मिले होंगे।
जी,
तो शुरू करें, राजस्थान से अपना सफ़र बताएं।
जी, मेरा जन्म राजस्थान के पाली नाम के ज़िले में हुआ, और जिस समाज से, जिस खानदान से मैं संबंध रखती हूँ, वहाँ पे ज़्यादा शिक्षा का माहौल नहीं है, और अगर कोई है तो वो सब साक्षर हैं, शिक्षित हमारे पूरे समाज आसपास के समाज में लोग नहीं हैं। और मेरे पिताजी, जब मैं 10 महीने की थी तो पिताजी दिल्ली आ गए थे हमें और मेरी माताजी को राजस्थान में छोड़कर। तो जब मैं 5 वर्ष की हुई तो मेरी माताजी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था, और स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से जो वो पढ़ाती थी बच्चों को, वो छूटना पड़ा, मम्मी बेरोज़गार हो गई। तो जब घर में बहुत ज़्यादा माली हालत ख़राब हुई तो उसकी वजह से मुझे राजस्थान पापा के पास भेज दिया गया, ताकि घर में अगर एक खाने वाला अगर कम हो जाएगा तो थोड़े से पैसे बचेंगे, मतलब एक रोटी बचेगी, इस तरह के मजबूरी की वजह से। तो मैं दिल्ली आ गई, और दिल्ली में पापा हज़रत निज़ामुद्दीन के पास में बारापुला नाम के एक जगह पे झुग्गी बस्ती में रहा करते थे, और एक छोटा सा घर था, झुग्गी थी, दीवारें जो थी वो फट्टों की बनी थी, लकड़ी के फट्टे थे, बलियाँ थी, और बलियों में दीमक लग गया था, तो दीवारें बिल्कुल गिरने के लिए तैयार थीं कि किसी भी वक्त हमारी वो दीवार घर वगैरह टूट सकता था। छत जो थी तारपुलिन की थी, चटाइयाँ जो बांस की चटाइयाँ होती उससे ढकी हुई थी, और उसके ऊपर तारपुलिन था, और बहुत तेज़ धूप होती थी, बिल्लियों वगैरह की वजह से तारपुलिन फट जाता था, छेद हो जाते थे, बरसात में पानी घर में टपकता था। तो जब भी बरसात होती थी, और अगर रात में हो, अगर बरसात हो जाया करती थी, तो हम लोग उठ के कभी कहीं पे बाल्टी लगा के, कहीं पतीला लगा के, मतलब कि सामान वगैरह ना भीगे और पानी वहीं टपके। तो इस तरह का घर था, इस तरह की ज़िंदगी थी, और नाला था, बरसात के मौसम में नाले में बाढ़ आ जाती थी तो घर में और भी पानी वगैरह आ जाता था। मगर एक संतुष्टि थी कि हाँ घर है। लेकिन 2001 में वो अनाधिकृत क्षेत्र था, तो वहाँ पर रिहायश की इजाज़त नहीं थी। 2001 में झुग्गियाँ टूट गई, हम बेघर हो गए। तो फिर हम लोगों ने देखा कि कहाँ रहना चाहिए, तो पापा त्रिलोकपुरी आ गए, और त्रिलोकपुरी में हमने किराए का एक मकान ले लिया। हज़रत निज़ामुद्दीन में पापा फुटपाथ पे कपड़े या थोड़ा सामान कुछ बेचा करते थे।
जब और उस समय आपकी उम्र कितनी थी?
मैं चौथी कक्षा में थी।
आपकी कहानी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, वहाँ से शीशे के उस पार बैठे हमारे तकनीकी सहयोगी राजेश चौहान मुझे इशारा कर रहे हैं कि कार्यक्रम में श्रोता शामिल हो रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। श्रोता इस समय हमारे साथ हैं?
हेलो,
कौन श्रोता हमारे साथ हैं इस समय?
पूजा शुक्ला बोल रही हूँ।
पूजा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रही हैं?
मैं दिल्ली से बोल रही हूँ।
जी, रखें अपनी बात।
जी, सबसे पहले तो मैं मैम को बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको नए सिलेक्शन के लिए, और आपका सफर सुन के लगा बहुत ही प्रेरणादायक रहा है ये सब सुनने के लिए कि ऐसे इनवर्स कंडीशन में भी आप रही हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम जब प्रिपरेशन करने बाहर आते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस झेलनी पड़ती हैं, और जहाँ की इतने सारे कोचिंग्स की भरमार है और लोग प्रतिभ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कई लोग बहुत साल लगा देते हैं, इसमें आपको कहाँ से सहयोग मिला और ऐसे इनवर्स कंडीशन में भी आपने कैसे खुद को संभाला और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कहाँ-कहाँ से सहयोग लिया आपने?
देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा बड़े सपने रखते हैं तो हमें हिम्मत भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो उसमें आपको कौन सपोर्ट दे रहा है, कहाँ से सहयोग मिल रहा है, कहाँ से सहयोग नहीं मिल रहा, कई बार ये बहुत ज़्यादा बेईमानी हो जाता है। तो जिस वक्त मैं रह रही थी तो मुझे तो अपने माता पिता का भी सहयोग नहीं था। बस स्कूल में जाती थी तो स्कूल में टीचर थोड़ी पीठ थपथपा दिया करते थे, तो उनकी तरफ से मॉरल सपोर्ट था। और बच्चे जो मैं पढ़ाती थी तो बच्चों के मम्मी पापा से सहानुभूति थी। तो ये जो सोशल सपोर्ट है, इसकी नीड कई बार होती है। और कई बार जब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, अपने सपने को, अपने हौसले को जब बहुत ज़्यादा बुलंद कर लेते हैं, तो आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं वो आपके लिए बहुत सेकेंडरी हो जाता है। तो देखिए, अगर सपोर्ट मिल रहा है आसपास का तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर आपको इतना ज़्यादा फौलादी बना देगा कि फिर आपको एक टाइम के बाद में आपके ऊपर फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। जहाँ तक यूपीएससी की तैयारी का सवाल है, तो ऑनलाइन मैं सब लोगों को ये सुझाव दूंगी कि आप ऑनलाइन जो अवेलेबल मटेरियल है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करें। आजकल हमारी यूपीएससी में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मतलब 10-15 साल पहले किसी किताब में क्या छपा था उसको रट के एग्ज़ाम में लिखने के बजाय बहुत चीज़ें डायनामिक हो गई हैं। तो नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर एक पैनी नज़र रखकर एक हमें इंडिपेंडेंट ओपिनियन बिल्ड करना पड़ेगा। वही हमारा मेंस में काम आएगा सारे एग्ज़ाम्स में, और उसी के आधार पर हमें इंटरव्यू में शानदार परफॉर्मेंस करने का मौका मिल पाएगा।
और लगे हाथ और श्रोता देखते हैं कौन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में।
मैम, कांग्रेचुलेशन मैम।
थैंक यू सो मच।
आप अपना नाम बताएं और बताएं कि कहां से बोल रही हैं।
मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली से बोल रही हूं।
नीरज जी, कुछ अपने बारे में बताएं, क्या तैयारी करती हैं आप?
मैंने ग्रेजुएशन के बाद अभी जस्ट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया है। सेल्फ स्टडी में अभी कर रही हूं। मेरे भी कुछ फाइनेंशियल और फैमिली इश्यूज की वजह से मैं कुछ ज़्यादा भी कर नहीं पाई थी कि मैं कोचिंग ले लूँ या कुछ ले लूँ वहाँ से, तो इसलिए मैं ऑनलाइन स्टडी अभी अपनी स्टार्ट करी है मैंने अभी लास्ट 1 मंथ से
जी।
तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे इसका स्ट्रेटेजी क्या है कि हम कैसे और अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं अपने आप को
जी
स्टडी के लिए।
जी। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोचिंग वगैरह अगर आप नहीं ले पाते तो बिल्कुल भी अपना मन तोड़ने की, अपने आप को हताश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अब इस तरह का हो गया है कि कोचिंग वाले जो हमें पढ़ा दें और उनको पढ़ने के बाद में हम आईएएस ऑफिसर या एक ब्यूरोक्रेट बन जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है। तो अगर हम कोचिंग नहीं ले पाते तो बिल्कुल भी अपने आप को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मत डालिए। आप अखबार वगैरह पढ़िए, राज्यसभा टीवी और जो अच्छे जो हमारे अच्छे चैनल्स वगैरह हैं उन पे जो न्यूज़ एनालिसिस आता है उसके ऊपर रिलाई करिए। और मैं दोबारा से इस बात को कहूँगी कि ऑनलाइन जो हमारे मटेरियल अवेलेबल है उसको तैयार करके आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए। अभी मैंने अपनी डिटेल यूपीएससी की स्ट्रेटजी यूट्यूब पर मैं डालूँगी 1 या 2 दिन में। तो अगर आप और ज़्यादा अगर चाहते हैं तो उसमें आप एक अच्छे से हम उसमें डिस्कशन कर पाएंगे। अभी मैं आपसे बस ये कहूँगी कि चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की, तो ये ठीक है कि हम महंगी किताबें पढ़ें, लेकिन अगर हमारे पास उसके पैसे नहीं हैं, कोचिंग के पैसे नहीं हैं, तो हमें अपना मतलब मनोबल तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और श्रोता हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उम्मुल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आसान नहीं होता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि त्रिलोकपुरी में जब वो समय आया कि जब आपको फैमिली ने अलग कर दिया, आप अकेले रहने लगी
जी,
घर परिवार ने साथ छोड़ दिया
जी,
जरा वो लम्हा बताएं हमारे सुनने वालों को, क्या बीती उस समय आपके ऊपर? जाहिर सी बात है तकलीफ बड़ी हुई होगी
जी। मैं जब तक 7वीं कक्षा में थी तब तक घर का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहा था, क्योंकि मेरी माता जी भी मेरी दूसरी मम्मी है। तो वो जो ममता का और एक जो घर में जो लगाव होता है, एक जो अपनापन था, वो भी थोड़ा थोड़ा कम ही मिला था। तो ऐसे में बार बार ये कहने के लिए मुझे सुनने के लिए मिलता था कि हमारे यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ती और हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जाती, हमारे यहाँ बच्चियाँ 5वीं क्लास के बाद में हम उन्हें अकेले बाहर नहीं भेजा करते हैं। तो ऐसे में तो तुम बहुत पढ़ ली हो और तुमने 8वीं क्लास पढ़ ली है, तो ऐसे में अब 8वीं बहुत है, अब घर पर ही रहो। तो जब मैंने उनसे ज़िद की कि नहीं मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर हमारे साथ रहना है तो जिस तरह हम कहेंगे और हमारे कहे अनुसार चलना पड़ेगा, और तुम्हारी वजह से हम अपने ख़ानदान की बदनामी नहीं होने देंगे। तो मैंने बहुत मनाने की कोशिश की और उन्हें समझाया भी कि पढ़ने लिखने से ख़ानदान की बदनामी होने का कोई संबंध नहीं है, मगर वो उनकी एक इमेजिनेशन थी कि अगर जब बाहर जाते हैं तो लड़कियां मुँहफट होती हैं, बदतमीज़ होती हैं, किसी तरह से फैमिली का बैड नेम वगैरह होगा। तो फिर जब उन्होंने मुझे नहीं कहा और कि हम आपको राजस्थान भेज देंगे, तो फिर बहुत मजबूरी में।
उमुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एक अंदर से वो आपको ताकत, वो इच्छा कहाँ से मिलती थी जिसकी बूते आप ये सब कर पाएँ। उससे पहले हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि कोई एक ऐसा गीत आप जो आपको लगता है कि जिसने आपका कभी मन बहलाया हो, जो पढ़ाई के दौरान और तैयारी के दौरान आपको बड़ी ऊर्जा देता हो, हम श्रोताओं को भी सुनवाते चलें।
जी जी, वो जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले,
भाग मिल्खा
भाग मिल्खा भाग का जी।
सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले।
तो आप जिंदगी का प्याला भर भर के पी रही हैं, अब सफलता का आनंद ले रही हैं। ये बताइए कि जब कोचिंग पढ़ा रही थी आप, मैंने पढ़ा, आपने बताया अभी बच्चों का, तो ये समय आप अकेले रहा करती थी उस समय, आपको कभी ये लगा नहीं कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई घर में नहीं है और खाने पीने का कैसे काम चलेगा? तो ये कैसे चलता था खाने पीने का, सब कुछ बताइए। मतलब अकेला भारतीय समाज में मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की के लिए महानगर में अकेले रहकर ज़िंदगी जीना और अपने पैरों को मजबूत बना के खड़ा होना आसान नहीं होता है।
ये संतुष्टि की मैं पढ़ रही हूँ, ये सुकून की मैं स्कूल जा रही हूँ और मेरी पढ़ाई बीच में नहीं छूटी, और उसमें फिर उन बच्चियों को देखना जो चौथी करके तीसरी करके घर में बैठ गई और अब कोई सिलाई सीखने जा रही है, कोई बुनाई कर रही है, तो उन लड़कियों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती थी। और यही वजह थी कि फिर मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं अकेली रह रही हूँ, कि मेरे साथ कोई नहीं है।
कभी रोना नहीं आया आपको अपने हालात पर?
इतना टाइम ही नहीं मिलता था।
अपने आप को आप हमेशा बिजी रखते थे, व्यस्त रखते थे, डूबे रहते थे पढ़ाई लिखाई में?
पढ़ने लिखने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं शायद स्कूल टाइम में मैं शायद दो दिन भी अपने आप में नहीं पढ़ी होंगी। मैं बच्चों को ट्यूशन तो लोकपुरी में ट्यूशन पढ़ाती थी, तो 3 बजे मेरे स्टूडेंट आ जाया करते थे, 3 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक मैं उनको पढ़ाती थी, क्योंकि वो इलाका बहुत गरीब है, तो बच्चों को पूरे महीने पढ़ाती थी, तो एक बच्चा मुझे 50 रुपये देता था।
आपकी कहानी जारी रखेंगे, मुझे इशारा मिल रहा है, हमारे तकनीकी सहायक राजेश चौहान कह रहे हैं कि और श्रोता लाइन में है। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
जी, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम को बधाई इनकी अपार सफलता के लिए।
हिमांशु, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
जी सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
दिल्ली से बोल रहे हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं आप? दिल्ली के ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आकर तैयारी कर रहे हैं?
नहीं सर, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा
हूं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से आते हैं आप?
जौनपुर जिले।
जौनपुर जिले से बीबीसी सुनते हैं आप?
जी सर, टाइम मिलता है मैं यूट्यूब
पे। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आप सवाल रखिए उम्मुल खैर के सामने।
जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन के टाइम में कभी नेगेटिव फीलिंग्स आई होगी आपके सामने या जो प्रॉब्लम, तो आप पॉजिटिव सोर्स क्या रहा है या पॉजिटिव एनर्जी आपने क्या रहा है उसका भी प्रिपरेशन में आपका मनोबल बना रहा है?
जी देखिए, जब यूपीएससी की तैयारी मैं कर रही थी तो एक जो क्लैरिटी थी कि अगर सिलेक्शन हो गया तो एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, अगर एक सिलेक्शन हुआ तो एक कलेक्टर बन जाएंगे, और फिर मेरे एक साइन से इतने हज़ार लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँगी और मैं उन सब चीज़ों के लिए कुछ कर पाऊँगी जो कि मुझे सब नहीं मिली। तो ये जो चीज़ें हैं, यू हैव टू इमेजिन द थिंग्स इन अ वेरी क्लैरिटी। आपको हर एक चीज़ साफ साफ सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है जिसमें आपको हर एक पल आपकी परीक्षा होती, आपकी लगन की परीक्षा होती है। तो ऐसे में आपको जो है अपने मोटिवेशन को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा. तो आपको हर एक वक्त इमेजिन करना है कि नहीं, ये जो मेरी प्रेपरेशन है ये बर्बाद नहीं जाएगी और कुछ टाइम बाद में मुझे कलेक्टर बनना है, समाज के लिए इतने बदलाव आएंगे.
उम्मुल, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत की दिशा यूपीएससी की तैयारी पर जा रही है. हम आपकी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में और जानना चाहेंगे. सपने आते होंगे आपको
जी.
बनने के पहले और बनने के बाद भी
जी.
कुछ फ़र्क महसूस हुआ? पहले किस तरह के सपने देखती थी आप? कुछ ऐसा कभी लगा कि ये सपना है मेरा, या मुझे कुछ अंदर से पुश करता है, या कोई अंदर का डर है?
सपने अभी भी मेरे पहले जैसे ही हैं, कुछ भी बदला नहीं.
क्या
है?
देखती थी आप?
वही, मतलब कि मतलब मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को लेके अपने आप को टूटने नहीं दिया, कभी भी हार नहीं मानी.
वो तो हिम्मत कहाँ से मिली आपको?
वो सपनों से मिलती है. जब आपका सपना अगर सच्चा होता है और सपने के प्रति अगर आपका समर्पण है तो यूपीएससी तो बहुत छोटी चीज है.
बिल्कुल, जिंदगी की लड़ाई से बढ़कर कौन सी लड़ाई
दुनिया जीत सकते हैं. बस अपने सपने पर आपका विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास.
तो जल्दी से बताइए कोई दूसरा गाना जो आपको कभी आपका मन बहलाता हो, आपकी आपका हौसला बढ़ाता हो.
हाँ देखिए, दुनिया जिंदगी जो है वो दंगल है. एक एक
मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल. सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल. माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे.
जिंदगी का दंगल तो आपने जीत लिया. और देखते हैं इस समय 1811 7000 पर कौन श्रोता हमसे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं.
हाँ सर, मैं मिलिंद बोल रहा हूँ.
मिलिंद कहाँ से बोल रहे हैं?
सर मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बोल रहा हूँ.
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में क्या करते हैं मिलिंद आप?
सर मैंने अभी एमए कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से.
और आगे?
आगे सर आईएएस की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हैं.
तो आपके सामने उम्मुल खैर हैं जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी हैं, कुछ पूछना चाहेंगे उनसे आप?
यस सर, यस ऑफ
जी. मिलन जी बोलिए.
हाँ
जी,
फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन मैम.
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया
मैम. मैंने पढ़ा आपके बारे में काफी कुछ
जी जी
नेट पे
जी.
और मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि मैम आपको कब लगा कि मैम आप आईएएस के लिए जाना चाहती हैं?
ये मेरा बचपन.
प्रिपरेशन कब से आपने शुरू करी?
जी जी, ये सपना मेरा बचपन का था, मगर इसकी प्रिपरेशन मैंने 2016 जनवरी से स्टार्ट की थी.
मैम ने आपने इसके लिए कोचिंग भी किया था या फिर आपने स्टडी से?
कोचिंग मैंने थोड़ा सा जनरल स्टडीज के लिए थोड़ा सा लिया था, मगर वो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. सेल्फ स्टडी से जितना अच्छा आपका मेंटल मेकअप हो सकता है, जितनी मेच्योरिटी आपकी आएगी, वो कोचिंग से कई बार नहीं आ पाती. तो अगर कोचिंग मिल रही है तो अच्छी बात है, और अगर कोचिंग नहीं मिल रही मिलन साहब तो और भी अच्छी बात है. हम अपने आप तैयारी करेंगे तो शानदार तैयारी होगी.
मैम सब्जेक्ट कौन सा रखा था आपने मेंस में?
मेरा साइकोलॉजी था.
उमूल ये बताइए, मनोविज्ञान विषय लेकर आपने सफलता हासिल की है, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि सफलता हासिल करने से पहले काफ़ी समय से आप अपने माता पिता से नहीं मिली, ये सच है?
मैं नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं मिलती थी, वो मुझसे खुद नहीं मिलते
और
थे.
दूसरी बात ये कि परीक्षा जब आपको लगा कि अब आप कुछ ज़िंदगी में सफल हो रही हैं, उसके बाद नतीजा आने के बाद यूपीएससी का आप अपने पेरेंट्स से मिलने गईं?
मैंने उन्हें फ़ोन पे बात की.
अभी तक मुलाकात नहीं हुई?
हाँ, क्योंकि वो लोग राजस्थान में हैं अब.
आपको क्या लग रहा है जब पहली बार मिलेंगे सफल होने के बाद तो कैसा होगा वो समय?
मैं मतलब देखिए, जो भी इतने टाइम तक जो दूरी थी वो इस वजह से थी कि मैं इस सपने को पूरा करना चाहती थी, और वो शायद इस सपने को ठीक से समझ नहीं पाए थे.
आपके मन में कभी इस बात का कुछ मलाल रहा कि आपको पेरेंट्स ने अपने से दूर कर दिया था, और तब जब आपको उनकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपको अकेला छोड़ दिया?
नहीं नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई दुख इस बात का नहीं है कि शायद उनकी कोई गलती नहीं थी. उन्होंने वाकई, ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लड़कियां बाहर नहीं जाती, तो ऐसे में अगर मैं बाहर गई तो शायद उस माहौल में वो अपने आप को मतलब डिफेंड नहीं कर पाए होंगे मेरी पढ़ाई और ये सब चीज़ें. तो जो भी था वो उनका अपना एक डिसीजन था, उनकी समझदारी थी, और मेरी तरफ से कोई शिकायत वगैरह नहीं है
बेटी को माँ बाप से कोई शिकायत नहीं है। आइए अब देखते हैं कौन श्रोता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
हेलो,
कौन साहब बोल रहे हैं?
नमस्कार सर, मैं रमन बोल रहा हूँ।
रमन जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं बिहार से बोल रहा हूँ।
रखें अपनी बात।
सर्वप्रथम तो अनमोल जी को एग्जाम एग्जाम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, और हम जैसे स्टूडेंट के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी।
जी धन्यवाद। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप जैसे हम लोग जैसे स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि पीटी की जो यूपीएससी पीटी है,
हाँ,
उसके उसके लिए सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है बेहतर से बेहतर ढंग से,
यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसे। जी जी, जी।
और हाँ, एक क्वेश्चन और है कि आप मेंस के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रिफर करना चाहिए या कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनसे जल्द से जल्द तैयारी किया जा सके।
जी जी, देखिए यूपीएससी की प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के लिए हमें दो हिस्सों में उसको बांटना पड़ेगा, एक होगा करंट अफेयर, एक होगा स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट जो है आजकल यूपीएससी के प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो आप उसे पढ़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे। हमारा सारा एम्फेसिस जो रहेगा वो आज के करंट अफेयर्स पे, नई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल इशूज़ पे रहेगा। तो ये तो हमारी प्रीलिम्स की बात रही। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में आपने बताया, यूपीएससी में ऐसा कोई फेवरिज्म नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी अपने मेडिकल और अपने साइंस सब्जेक्ट्स को छोड़ के, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को छोड़ के ह्यूमैनिटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह लेते हैं। तो ये जो मन में दुविधा है कि क्या हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो यूपीएससी होगा या नहीं होगा, तो ये सब बातें आप बिल्कुल इससे परेशान ना हो।
मूल कार्यक्रम में समय बहुत कम बचा है, अब जब आप एक मकाम पे पहुंच गई हैं, इसके आगे बहुत मुमकिन है आपको मसूरी बुलाया जाए जैसा कि आप चाह रही हैं, और आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। मैं पढ़ रहा था कि आपको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं पूरे भारत में
जी।
तो अब यहाँ से आगे आप सफ़र कैसे देख रही हैं?
मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो पूरा जीवन है समाज को समर्पित रखूंगी, पर्संस विद डिसेबिलिटीज को।
आंखों में मसूरी घूमता है कभी कभी तस्वीरें?
हाँ, ये बचपन का सपना था, तो बहुत अरमान है वहाँ जाने का।
और कोई और गीत जो इस अरमान का सफर यहाँ तक आपने तय किया जिसके बीच में आप गुनगुनाती रही हो?
जी बहुत खूबसूरत गाना कुछ करिए,
कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोल अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चक दे।
आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, और आप जैसी तमाम लड़कियां इस देश में होंगी जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, उनके लिए संक्षेप में क्या करना चाहिए, क्या संदेश देंगी उन्हें?
मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को, अपनी सारी दोस्तों को जो फीमेल्स हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, और उससे भी ज़्यादा प्रेशियस जो है वो आपके सपने हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीना एक अलग बात है, लेकिन बिना सपनों के जीते हैं तो वो ज़िंदगी का कोई मायने नहीं रहता। तो अपने सपनों को ज़िंदा रखिए, और उसके लिए कुछ अगर कीमत भी चुकानी पड़े तो डरिए मत, और अगर सपने के प्रति समर्पण रखेंगे तो कितना भी बड़ा सपना क्यों नहीं हो, सपना ज़रूर साकार होगा। तो किसी भी तरह से किसी चीज़ से डरने की, अपने आप को कम समझने की, कमज़ोर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया आगे बढ़िए और दुनिया को जीत लीजिए।
और जब कभी ऐसा लगे कि सपना टूट रहा है, हम अंदर से कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
सपना टूटने का, कमज़ोर पड़ने का सवाल ही नहीं आता सर। मतलब आप मतलब ऐसा ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, तो कभी कभी भावनात्मक तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, मगर कमज़ोरी थोड़ी क्षण की होगी, कुछ देर की, उसके बाद में जब उभरेंगे तो उससे ज़्यादा मजबूत होकर हम उभरते हैं। तो कभी अगर इस तरह से मन टूटे भी तो अपने आप को पूरी तरह से तोड़ने की, हताश करने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत शुक्रिया इंडिया बोल में आज इतना ही। उम्मुल खैर, आपने स्टूडियो आने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया हमारे तमाम श्रोताओं और दर्शकों का, विकास त्रिवेदी और राजेश चौहान हमारे तकनीकी साथी इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे थे। अगले शनिवार फिर एक नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे, तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।